हैं कभी राजा जी, वो
कंधारी
अनार वो होता है जिसका बीज बड़ा नरम होता है, दांतों में फंसता नहीं, ठीक है।
मैंने अपने मेरे बाग में लगा हुआ है, बाग है मेरा पाकिस्तान में, वहाँ लगाया हुआ।
मैं समझी शायद कनाडा वाले बाग में लगा हुआ। माशाल्लाह, आपको और इजाफा करे, रिस्क में और इजाफा करे, आमीन। मैं अनारों के बाग में से बड़े अनार तोड़ तोड़ के खाए हुए हैं। कनाडा में कंधारी अनार जो है ना, अगर आप आज ओशन स्टोर पे चले जाएं तो आपको 399 का एक मिलता है। वो जरा बड़े साइज का होता है, बड़े साइज का। मैं इस वीकेंड के ऊपर आपको बताइए कि टॉयज ड्राइव थी हमारी यहाँ पे, तो आई वेंट टू द फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट में मैं गई, तो इट वॉज, मैं क्लाइंट के साथ थी, आई वॉज शोइंग सम प्रॉपर्टीज। तो मैं वहां से निकल के ऑन द वे मैंने कहा मैंने टॉयज खरीदने हैं, तो वहां पर माजिद भाई जो फ्रूट सेक्शन था ना, तो वो कह रहा था 25 25। मैंने कहा इतनी बड़ी प्रैक्टिकली इतना बड़ा, जिसके बीच में कम अज कम 50 अनार थे, 45 से 50, पर छोटे साइज के थे। मैं देखा शादिया जरा वो अनार निकाल के लेके आइएगा फ्रिज से, छोटे साइज के थे भाई, एडे मिठे एडे मिठे एडे मिठे के मैं तुहानू की दसा। तो अगर आपने अनार लेने हैं ना, तो बजाय यहां से लेने के, यू शुड गो एट द वीकेंड टू फ्री मार्केट। संडे को जाइएगा, शाम को 5 बजे जाइएगा, कंधारी अनार। उसने जी वो, तब तक जब मैं उस तक पहुंची, तो तब तक छुरी भी ला दो, तब तक ये देखिए जी, ये वाला अनार, ठीक है, ये वाला अनार अभी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ अंदर से कैसा। तो मैं अगर राजा जी का भी कह रही हूँ, अगर मैं ये अनार के बारे में आपको बता रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सेव मनी एंड एंजॉय, इसका जूस निकाल के पीजिएगा, दिस इज सो स्वीट, मीठा, इतना मीठा कि मैं आपको क्या बताऊं। इसी तरह से मैं कह रही हूँ कि अगर इफ यू वॉन्ट टू सेव, डोंट थिंक इट इज ओनली अ कमर्शियल, आई मीन इट। राजा बादशाह ऑल स्टेट के साथ है। अनार काटने का आपको तरीका भी बताती हूँ, थोड़े पहले प्लेट अलग कर लो। राजा जी मैं आपसे एक एक पहेली पूछने लगी हूँ।
जी मैं कोशिश करूंगा, बड़ा सही पूछने में बड़ा मसला है मुझे।
वो है सोने की थाली,
अच्छा,
जड़ाऊ का टीका, अमीरों का खाना, मुंह फीका का फीका।
अनार।
देखिए जी, अनार के नीचे अल्लाह ने एक प्लेट डाली हुई है, दिस इज अ प्लेट। अब मैं इसका ऊपर का हिस्सा काटती हूँ, और अगर मैं ये सिर्फ आपको इसलिए कह रही हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, इट्स सो इजी, और राजा बादशाह को भी कॉल करें, एंड आई गारंटी यू विल सेव अ लॉट। वीकेंड के ऊपर अनार लेने के लिए भी जाइएगा, एंड आई गारंट, लुक एट दिस, ओह माय गॉड।
वो भी कहते हैं ना, जिस गाड़ी पे जाएंगे उसकी इंश्योरेंस की कोट ले लें।
वो कह रहे काम की तो बात करो,
एग्जैक्ट। ये देखिए मैंने अनार कितने अच्छे तरीके से काटा, अब आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे, लुक ये देखिए कैसे निकल आया आप इसको।
बिल्कुल नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात को जी।
ओह माय गॉड, सो स्वीट। ओह, तो राजा बादशाह से आप लीजिए अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस, और राजा बादशाह के तवसुत से मैंने आपको अनार काटने का तरीका भी सिखा दिया। पहले नीचे से काटें, उसकी प्लेट अलग कर लें, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से से ये देखें चेम्बर्स अलग होते चले जाएंगे, और फिर दरमियान वाले हिस्से को ऐसे खींचेंगे, बीच में से निकल गया, एंड देन ये देखिए सारे के सारे निकल आए। ये राजा बादशाह के तवसुत से मैंने आपको अनार काटने की तरकीब बताई। राजा बादशाह का अनारों का बाग भी है पाकिस्तान में, चलेंगे इकट्ठे खाएंगे।
तरकीब तो मैं देख ली, मगर जो दुख वाली बात है, खाना सिर्फ आप नहीं है।
ओहो, आपने अपनी तस्वीर देखी थी?
जी
ये तस्वीर भी देख लें अपनी।
चलो ठीक
है, जब मैंने कहा था ना 1800
रिफ्लेक्शन है
जी। नहीं नहीं, ये राजा जी ये जो बाल खड़े हुए ना, जिसमें से एकदम से इंसान को करंट लगता है ना, तो बालों में से करंट निकल निकल के ऊपर जा रहा होता है, ये वो फोटो।
नहीं जी, चले बहुत शुक्रिया,
इट इज सो डिलीशियस। एंड दिस अनार काटने की तरकीब मैंने आपको सिखाई राजा बादशाह के तवसुत से। एक टिकट में दो मजे, सस्ती इंश्योरेंस भी लेके दी और अनार काटने का तरीका, और इसको खाने का तरीका, अगर आप सुस्तल वजूद भी है ना, तो बस ऐसे काट ले,
चाहे फिर सोशल वजूद में तो मैं और माजिद भाई दोनों को चाहिए।
दुनिया का हर आदमी सुस्तल वजूद, मेरा पुत्र भी सुस्तल वजूद, मेरे मैं तुम दसनी हाँ पता नहीं आदमियों ने उन्होंने किवे बनाया थी।
मगर अब राजा बादशाह ही कह रहे हैं कि मेरी अगली पेमेंट जो है ना वो आप जाके अनार वाले से ले लीजिएगा। आपने अनार का ज्यादा जिक्र किया
मेरे जी, आप सारे के सारे राजा बादशाह को कॉल करके शुक्रिया अदा करें कि राजा जी आपके तवस्सुत से आरफा ने हमें अनार काटने की तरकीब सिखा दी।
जी बिल्कुल जी बिल्कुल,
क्योंकि राजा जी आप ही के तवस्सुत से सारा प्रोग्राम चलता है ना।
बहुत शुक्रिया जी,
शुक्रिया।
नहीं अच्छा लगा ये जो गुफ्तगू अनार वाली हुई ना, बहुत अच्छी लगी। मगर
राजा जी मैंने तरकीब सिखा दी, ये देखें कितना कमाल का अनार काटा है मैंने।
हाँ ना, मगर इसमें अलमिया है ना कि ये सिर्फ खाना आपने
अगर आपने खाना तो वीडियो आ जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया,
जीते रहो मेरी जान, खुश रखे आपको। टॉप ऑफ द आवर विल कम बैक से ड्यून। हमारे साथ होंगे जनाब फियाज विलाना साहब इन अ लिटिल व्हाइल।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵਾਈਲਡ ਰਾਈਡਸ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.99 APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤਮਾਮ ਹੀ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਜਾਂ forddealers.ca ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ।
काश घर पैसे भेजना आसान ते सुखाला हुंदा। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर दे नाल विदेशां विच वसे तुहाडे प्यारे उसे दिन स्थानक मनी ग्राम केंद्रां तों कैश पिकअप कर सकदे हन, यानी कि ओ पैसा उसे दिन लै सकदे हन जिवें कि ए दिन अते ए दिन। जे तुसी प्यार दा सुनेहा भेजना होवे तां $0 CIBC ट्रांसफर फी राहीं अपने प्यारियां नूं उसे दिन कैश पिकअप सुविधा राहीं भेजो। वधेरी जानकारी लई CIBC.com/cashpickup ते जाओ। शर्तां अते CIBC फॉरन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी। तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL बिकॉज वी केयर।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
जी सामने नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 4:08:42 हमारी घड़ी में हो चुके हैं। आपको लिए चलता हूं साहब ऑल डस्ट सॉल्यूशन में, और ऑल डस्ट सॉल्यूशन के मोहम्मद सिद्दीक साहब मेरे साथ हैं। 416-671-0577 इनका फोन नंबर है। मोहम्मद सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
ठीक हूं अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा कुछ ऑल डे सॉल्यूशन मोहम्मद सिद्दीक के बारे में बता दें, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं सर?
میں بھائی ہم پچھلے 23-24 سال سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, اگر کسی وجہ سے وہ قرضے میں چلے جاتے ہیں چاہے وہ قرضہ چھوٹا یا بڑا, تو جٹ کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اوور 80% تک قرضہ معاف ہو جائے, باقی چھوٹی چھوٹی قسطوں میں وہ پے کریں, اور اگر اس میں ان کا کریڈٹ خراب ہوتا ہے یا آلریڈی خراب ہو چکا ہے تو ہم کلائنٹ کو انرول کرتے ہیں کریڈٹ ریبلڈ پروگرام میں, اور ان کا کریڈٹ بھی ریبلڈ کروانے میں ان کی پوری پوری ہیلپ کی جاتی ہے, اور بہت جلد ان کو کریڈٹ ریبلڈ کروا کے دیتے ہیں. اس کے لیے نمبر ہے 416-671-0577 پہ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور میرا میسج اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو منیمم پیمنٹس کر رہے ہیں یا ایک کریڈٹ کارڈ کا بل دوسرے کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں, اپنا پیسہ انٹرسٹ میں ضائع نہ کریں. کال کر کے چاہے فون پہ انفارمیشن لے لیں یا میری کسی بھی لوکیشن پہ آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں. فری کنسلٹیشن ہے, پرائیویسی کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے. آپ آئیں, انفارمیشن لیں اور اس کے بعد دیکھیں. گھر بیٹھے کبھی بھی یہ ڈیسائیڈ نہ کر لیں کہ میرے نام پہ ایسٹس ہیں تو مجھے ریلیف مل نہیں سکتا, یا ریلیف لے لیا تو مجھے دوبارہ کریڈٹ نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے, ہم آپ کے تمام ایسٹس اور بزنسز کو لیگل طریقے سے سیو کرتے ہوئے آپ کو ڈیٹ فری کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کریڈٹ کو بھی دوبارہ بلڈ کیا جا سکتا ہے, جس میں ہم آپ کی پوری پوری ہیلپ کرتے ہیں. جی مہیش بھائی,
آل دا سولوشن کے محمد صدیق صاحب, 416-671-0577.
میں اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی منیمم پیمنٹس کر رہے ہیں پچھلے 2 مہینے سے, یا ایک کریڈٹ کارڈ کا بل دوسرے کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں, قرضہ چاہے وہ 2000 ڈالر کا ہے, 5000 کا ہے, 10000 کا ہے, 1 لاکھ کا ہے, ملین کا ہے, جتنا جلدی ہو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کا فائدہ ہے, آپ کا پیسہ بھی انٹرسٹ میں ضائع نہیں ہوگا, اور ہو سکتا ہے آپ کا کریڈٹ بھی خراب ہونے سے بچ جائے, صرف ہم لو انٹرسٹ میں کنورٹ کروا کے آپ کا مسئلہ حل کر سکیں. سچویشن کوئی بھی ہو, گھر بیٹھے ڈیسائیڈ نہ کریں, کیونکہ میں نے پچھلے 23 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بھی گھر بیٹھے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے پورا قرضہ ود انٹرسٹ پے کرنا ہے, وہ کافی سارا پیسہ انٹرسٹ میں ضائع کر کے جب سارے کریڈٹ کارڈ لمٹ ختم ہو جاتی ہے, کریڈٹ کارڈ لائن آف کریڈٹ بھر جاتے ہیں, تو اس وقت ہمیں کال کرتے ہیں جب کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, تو اس وقت وہ آلریڈی کافی سارا پیسہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں انٹرسٹ میں, ڈیپ ڈیٹ میں ہوتے ہیں, اس ڈیٹ فری ہونے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, پھر دوبارہ کریڈٹ کو ری بلڈ کرنے میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. اس لیے اس کو سیریس لیں, اگنور نہ کریں, کال کریں 416-671-0577. ایک چیز کی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کا کیس ریویو کرنے کے بعد لوں گا تو میرے آفس سے آپ کو کبھی بھی کوئی سرپرائز نہیں ملے گا. جو آپ سے وعدہ کروں گا پہلی میٹنگ میں, اس کے مطابق جب کیس آپ کا اپروو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی پیمنٹ شروع ہوگی, اس سے پہلے کچھ آپ نے پے نہیں کرنا. اور جیسا میں نے بتایا کریڈٹ بھی ہم آپ کا ریبلڈ کروا دیں گے, قرضہ چاہے آپ پہ کریڈٹ کارڈ کا ہے, لائن آف کریڈٹ ہیں, پرسنل لونز ہیں, یا پھر انکم ٹیکس کا معاملہ ہے سی آر اے کے ساتھ پرسنل, یا بزنس کا جی ایس ٹی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, یا بزنس لون ہے, یا اسپانسرشپ ڈیٹ ہے, یا آج کل کافی سارے لوگوں کو لیٹر آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ سی ای آر بی جو لی تھی آپ نے ایلیجیبل نہیں تھے, واپس پے کریں. یہ سارے قرضے ہم آپ کے سیٹل کر سکتے ہیں. اسٹیٹس آپ کا یہاں پہ کوئی بھی ہو, چاہے اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں, ورک پرمٹ پہ ہیں, ریفیوجی ہیں, پی آر کارڈ پہ ہیں, آپ سب لوگ یہ ریلیف لے سکتے ہیں. اور یہ چیز آپ کے پی آر کارڈ پہ, امیگریشن پہ, اسپانسرشپ پہ بالکل افیکٹ نہیں کرتی. اس لیے اگر آپ پہ قرضہ ہے, اسٹرگل کر رہے ہیں, تو ایک دفعہ کال کر لیں 416-671-0577.
آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے سر؟
میں بھائی ہماری 4 لوکیشنز ہیں, اسکاربرو میں ہے, مارکم میں لیلزنر کے پاس, اٹوبیکو میں ہیڈ آفس ہے کپلنگ اور ریکسل کے پاس, مسساگا میں ہے ڈکسی 401 کے پاس, برمٹن میں ہے ڈکسی بویڈ کے پاس. اس کے علاوہ اگر دور رہتے ہیں, جی ٹی اے سے باہر رہتے ہیں, تو آپ زوم پہ میٹنگ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں, فون پہ کال کر کے, ویسے ریگولر کال کر کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. انفارمیشن لیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں. انفارمیشن اگر بغیر انفارمیشن لیے ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ کا کافی نقصان ہوگا, پیسہ بھی ضائع ہوگا اور آپ کا گریڈ بھی زیادہ خراب ہوگا. نمبر 416-671-0577 یا ٹول فری نمبر ہے 1-855-671-0577 پہ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں.
آل دا سولوشن کے محمد صدیق صاحب, فون نمبر ایک دفعہ اور نوٹ کر لیں آپ, 416-671-0577, 416-671-0577. بہت بہت شکریہ سر محمد.
تھینک یو مہیش بھائی,
بہت شکریہ. محمد صدیق سے ہم نے آپ کی بات چیت کروائی. کچھ اسپانسرز کے پیغامات, ول بی رائٹ بیک.
کہیں مارگیج نہیں مل رہی, جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گی آسان. 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام. ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں۔ ری فائنینسنگ آپشنز، رینیول آپشنز، مارگیج ڈیفیکلٹیز، ڈاؤن پیمنٹ ایشوز، سیلف امپلائڈ، پرائیویٹ فنڈز، سیکنڈ مارگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹوردی جیسمین پرمار سے۔ نمبر ٹو کال 6479235659 6479235659۔ لائسنس نمبر 10530۔
Did you know with CIBC Global Money Transfer, there are many ways to send money abroad? Like next day deposit to a bank account, same day cash pickup, or send it in minutes to eligible Visa cards or an Alipay wallet. The choice is yours with CIBC Global Money Transfer. Plus, enjoy a $0 CIBC transfer fee always. Visit cibc.com/transfer. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. CIBC. Ambitions made real.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے، تو انتظار کیسا؟ ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666۔ ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس۔
جی صاحب، نان کباب کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ نان کباب 7 ڈفرنٹ لوکیشن، KEBOB دے آر 7 ڈفرنٹ لوکیشن، اور اگر آپ چاہیں تو گوگل کر کے ان کی تمام نان کباب ونڈرفل فنامنل اس کی پریزنٹیشن ہے۔ کھانوں کی کوالٹی، کوانٹٹی، ہیلتھ وائز میڈیٹرینین فوڈ ہے، کوئی آئلی فوڈ نہیں ہے۔ دس از گڈ فار یو۔ اور نان کباب کا نمبر 9052829797۔ دے ریسنٹلی اوپن دیئر لوکیشن 5042 سیٹلائٹ ڈرائیو۔ دے آر ان ڈاؤن ٹاؤن، ان مارکم، ان اسکاربرو، ان وان، ان مسساگا میں دو لوکیشنز ہیں۔ آئی ہوپ دے ول بی ویری سون ان اوکویل ایز ویل۔ اور نان کباب کا نام ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ روبی جیولرز، خوبصورت زیورات اگر نیو ایئر پہ آپ لینا چاہتے ہیں تو روبی جیولرز اکرام بھائی از لوکنگ فارورڈ سینگ یو۔ 9056776888۔ منڈے کو بند ہوتے ہیں، صرف اونلی منڈے کو بند ہوتے ہیں، اوپن سکس ڈیز اے ویک۔ روبی جیولرز ایئرپورٹ روڈ پہ بالکل مسجد کے سامنے آپ کو ملتے ہیں روبی جیولرز۔ ولیج ٹیسٹ، فیصل چٹھا نے اس کو شروع کیا، پھر جلد سے اس کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ دے ہیو ٹو لوکیشنز ناؤ، 4141 ڈکسی روڈ، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمرے، تقریباً 4 رومز ہیں جہاں پہ آپ چھوٹی پارٹیز کر سکتے ہیں۔ تمام کو اکٹھا کرنے کے بعد بڑی پارٹی کا بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ ناؤ دے اوپن دیئر سیکنڈ لوکیشن 2294 لیکچر روڈ ویسٹ ان اوکویل میں انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور ولیج ٹیسٹ 9052323663 2323663۔ آپ آج انہوں نے ایک ڈرائیور کو پکڑا، 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے اوپر چلا رہا تھا، مگر اس نے کہا بھی میرے پیٹ میں بڑی درد تھی، اور
میرے پیسنجر کے پیٹ میں درد ہے۔ میں نہیں، میرے پیسنجر میں ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پیٹ میں بہت درد ہے۔
اوبر کا ڈرائیور ہوگا،
میں اس کو لے کے اس کے گھر جا رہا ہوں۔
اچھا، نہیں تو پھر اس کو کہو کہ یو آر لیونگ ان کینیڈا، یو وڈ ہیو کال 911، یو وڈ ہیو کال پیرامیڈکس۔ تو رادر دین ٹیکنگ ہم ٹو یور ہوم، his home, you would have taken him to the hospital. پیٹ میں درد ہو رہا تھا، بیوی نے کیا اس کو لڈو کھلانے تھے؟
نہیں، جو آج کل جو ہاسپٹل کے اینڈ پیرامیڈکس کے حالات ہیں نا، آپ جب تک ویری سیریس نہ ہو، کوئی آپ فون کرے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کہنے کا بھی تھمس کھا لو، مطلب میں کیا کر سکتا ہوں۔
بیوی کے پاس لے کے جا رہا تھا کہ اس کو میتھرے کھلاؤ تاکہ اس کی پیٹ کی درد ٹھیک ہو۔ 200 kilometers, صاحب، it's getting very common these days. But let me take you to جناب فیاض ویلانا صاحب، رینؤنڈ جرنلسٹ ہیں پاکستان سے۔ ویلانا صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام عرفہ بھائی۔
سر آج میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو زندگی سے تندرستی دے۔ مگر میں اس کے اوپر پروگرام کو کرنا چاہتی ہوں کہ میرے جرم میں یہ بھی شامل کر لیجئے گا کہ میں نے دنیا کو باخبر کیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اینڈ بیرون پاکستان جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، میں نے ان اسٹیبلشمنٹس کو بے نقاب کیا کہ ہاؤ کرپٹ دے آر۔ بیان جاری رکھی۔
اچھا، عمران خان جو ہے نا، اب تک لوگ جو کہتے تھے اسے سیاست نہیں آتی، میرے خیال میں وہ حیران کر رہا ہے لوگوں کو، دنیا کو، अपने एक एक स्टेटमेंट से वो लोगों को हैरान कर रहा है। ये उसकी स्टेटमेंट मेरे ख्याल में एक सत्री स्टेटमेंट, एक लाइन उसकी काफी है पूरे साइफर केस को और इमरान खान के रिजीम चेंज जो अमेरिका का ऑपरेशन है या हमारी लोकल एस्टेब्लिशमेंट का है जिसका भी है रिजीम चेंज ऑपरेशन, उस पूरे की एक लाइन में उसने वजाहत कर दी है कि मेरे जुर्म में ये शामिल कर लिया जाए कि मैंने मुल्की और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया है। अब इसके बाद क्या साइफर केस पूरा रह जाता है, बाकी सब जो हैं अब तफसीलात हैं उसमें कि हुआ कैसे, कब हुआ, कैसे हुआ, कब कब इमरान खान ने वॉर्न किया, और उसने तो ये रिजीम ऑपरेशन रिजीम चेंज होने से पहले वॉर्न कर दिया था और उससे पहले असद मजीद ने वॉर्न कर दिया था। भला हो असद मजीद का कि असद मजीद अभी तक जो है वो अपने उस मौकफ पे अपने बयान पे कायम है और उन्होंने साबित किया है कि वो वाकई एक कैरियर डिप्लोमैट है। वरना जो हमारे यहाँ सौदेबाजियों का सिलसिला है और जिस तरह हमारे यहाँ जजेस सरेआम खरीदे जाते हैं और मीडिया का तो हाल ही बुरा है, वो तो सुबह दोपहर शाम बिकते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी मिडल में, कुछ पता नहीं चलता कौन सा जर्नलिस्ट इस वक्त किसके साथ है, दोपहर को किसके साथ होगा और शाम को किसके साथ होगा और अगली रात पता नहीं कहाँ गुजारने के बाद सुबह उठेगा तो वो फिर किसके साथ होगा और किसके खिलाफ होगा। तो हमारे यहाँ जितना अब तक ये साबित किया है सिर्फ दो चीजें पाकिस्तान में आपको एक जगह कंसिस्टेंट नजर आती हैं, एक इमरान खान और एक इमरान खान के फॉलोअर, इमरान खान की बात को मानने वाले, उस पर यकीन करने वाले, इमरान खान के खिलाफ उसके जाती किरदार से लेके उसके सियासी किरदार से लेके उसके माजी हाल और मुस्तकबिल के तमाम तर किसी भी कोई ऐसी शिक नहीं छोड़ी गई जिस पे एतराज नहीं उठाया गया और ऐसे ऐसे गलीज एतराज उसकी जात पे उठाए गए हैं, उसके अमाल पे उठाए गए हैं, उसके किरदार पे उठाए गए हैं, उसके साथियों पे उठाए गए हैं कि कोई आम किसी सोसाइटी में इस तरह होता या जिस तरह की हमारी पहले सोसाइटी आज से पहले की थी शायद लोग बर्दाश्त ना कर सकते वो इल्जाम, लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोगों को कोई असर ही नहीं पड़ता। आप इमरान खान पे जैसा भी इल्जाम ले आए अगले दिन चार लोग और उसके साथ जुड़े होते हैं। जो सर्वे रिपोर्ट एक इल्जाम लगाने से पहले हमारे मुक्तदर हलके या हमारे सियासतदान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ जो 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 सोशल मीडिया पे और इन सर्वेज पे और इन चीजों के इन पे बहुत यकीन रखती हैं, वो एक इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगंडा लॉन्च करने से पहले सर्वे कराते हैं और एक उस प्रोपेगंडा लॉन्च करने के बाद करवाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उस प्रोपेगंडा जो भी उन्होंने कोशिश की है उसके बाद इमरान खान के हक में परसेंटेज 2% 3% और इंक्रीज हो रही है। तो फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा, जितना ये इमरान खान को दीवार के साथ लगा रहे हैं लोग इतना उसके साथ जुड़ रहे हैं। और अब इमरान खान की ये स्टेटमेंट जो उसने अभी हफ्ता पहले जब मीडिया से मिलने दिया गया था तो 9 मिनट उसकी मीडिया के नुमाइंदों जो 7 नुमाइंदे अंदर मौजूद थे 9 मिनट इमरान खान की मुलाकात हुई थी। उस 9 मिनट में इमरान खान ने नवाज शरीफ की 42 दिन पाकिस्तान आने के बाद की जो सियासत थी उसे फारिग कर दिया था और आज की इस एक सत्री स्टेटमेंट से साइफर केस इमरान खान ने फारिग कर दिया है। अब अगर हमारा लोकल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया अगर उनमें कोई थोड़ी सी भी रमक हो और वो वाकई इस बात का जायजा लें कि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हुआ है सिर्फ इस वजह से हुआ है और ये उसका जुर्म बनता है कि उसने हमारी पाकिस्तान की इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट लोकल एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट दोनों को वाकया ही बेनकाब कर दिया था। जी
बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये सर जब अदालत के बीच में कुछ लोगों को बुलाया और ये मैं मुतअद्दद ज़राए से मुझे पता चला है कि माजरत की ख्वाहिश करूं 3-4 तो जर्नलिस्ट होते हैं मगर कुछ लोग जिनको जर्नलिस्ट ने कभी कहीं नहीं देखा 4-5 सीटों को ऑक्यूपाई उन्होंने किया होता है, कुछ उसके बारे में फरमाएंगे?
उन्होंने वो रिपोर्ट होते हैं अपने हमारे जो हसास इदारे होते हैं उनके रिपोर्टिंग के लिए होते हैं, कुछ ISI के होंगे कुछ MI के होंगे तो हम उनके आदि होते हैं। बाहर हो तो जर्नलिस्ट पूछ लेते हैं उनसे कि हाँ भाई आपका कौन से अखबार से किस कौन से मीडिया आउटलेट से आपका ताल्लुक है। अब चूंकि अडियाला जेल है और कोर्ट के अंदर वो बैठे हुए हैं और वहाँ उस तरह मीडिया वाले का अमल दखल नहीं होता, खुद बेचारे बड़ी मुश्किल से पास जो है 10 के 12 के बनते हैं और अंदर पहुँचते हैं 4 या 5 तो वो कहते हैं कि हमें एक तो लेट अंदर पहुँचाया गया है और हम अपने कोर्ट की कार्रवाई जल्दी जल्दी वो कवर करें बजाय इसके कि हम उनसे उलझते रहें कि भाई आप कहाँ से आए और आप कहाँ से आए हो। तो इमरान खान को दूसरी पेशी पे जब इमरान खान पेश हुए तो दरमियान में 11 लोग थे और वो बाकायदा एक दीवार बना के खड़े हो जाते हैं जिस तरफ मीडिया बैठा होता है और वो और इमरान खान के दरमियान में वो दीवार बना के 11 लोग खड़े हो जाते हैं और वो असास इदारे के होते हैं और असास इदारा कौन सा है ISI है और मिलिट्री इंटेलिजेंस है और कौन से हैं या IB के साथ कोई उनके साथ मुआवन होते होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो वो चाहते नहीं है कि इमरान खान का इंटरेक्शन हो। तो वो तो नोन है कि कौन लोग होते हैं उसमें कोई उन्हें नामालूम अफराद कहें खलाई मखलूक कहें फरिश्ते कहें कुछ भी कहें ये वही होते हैं और ये सारी चीजें बाहर रिपोर्ट हो रही हैं और ये दुनिया देख रही है कि हाँ वहाँ पाकिस्तान में उस तरह की आजादी नहीं है जिस तरह की क्लेम करते हैं कोई या कुछ होनी चाहिए जिस तरह।
मेरा एक आप ही की बातचीत को मैं लेते हुए आज प्रोग्राम के पहले हिस्से को अगर आपने सुना है तो आप 100 साल पीछे चले जाइएगा, समझिए 5-10 साल कम, 12 साल कम, 1 साल 100 साल पीछे चले जाइए तो ऑटोमन्स को गिराया था ब्रिटिशर्स ने, मुसलमानों को बाउंटीज उनके मुंह को लगा के, खून उनके मुंह को लगा के मुसलमानों ने मुसलमानों को गिराया था। किसी को मुरब्बे दिए गए थे, किसी को ज़मीनें दी गई थी, किसी को वज़ायफ़ दिए गए थे। मैंने आज सद्दाम हुसैन के बारे में आपको बताया कि उनको उनके अपने आबाई शहर में उनके रिश्तेदारों को, तकरीत उनका शहर था, रिश्तेदारों को $25 मिलियन की बाउंटी के ऊपर रिश्तेदार बिक गए थे। हमें पैसे पे बिकना, लोगों को सिर्फ अपनी जाती मफादात की ज़रूरत है, नोबडी केयर्स फॉर। मगर इमरान खान का ये बयान कि मेरे जुर्म में एक और चीज़ ये भी लिख लीजिएगा कि मैंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को जो प्लान्स करते हैं उनको मैंने लोगों के सामने आश्कार किया था। मेरा सर आप
ये जो बात आप कर रहे हैं ना बिकने वाली, तो ये तो हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है ना। फॉर एग्जांपल आप अभी देखें कि इमरान खान के पिछली जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसमें कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और सेनेट के तमाम नुमाइंदगान मिलाए जाएं तो टोटल सीट्स बनती हैं तकरीबन 1175। 1175 में से 478 इमरान खान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इन मुख्तलिफ सूबाई असेंबलियों में, कौमी असेंबली में और सेनेट में। उन 478 में से 238 अब तक तोड़ दिए गए हैं, बाकी तकरीबन 200-225 बचते हैं। अब उन 238 जो अब तक तोड़े गए हैं वो किस वजह से तोड़े गए हैं? या तो उनकी कोई फाइल थी, वो ब्लैकमेल हुए क्योंकि उन्होंने कुछ पहले ऐसी हरकत की हुई थी जो उन्हें दिखाई गई है कि अगर आप नहीं इमरान खान को छोड़ेंगे तो फिर ये आपकी चीज़ें जो हैं आपको इन इन मुकदमात में फंसाया जाएगा, या आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा और आपको बेनकाब किया जाएगा, आपकी ऑडियोज, आपकी वीडियोज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने जो जिंदगी में जिस किस्म की कोई एम्बेजलमेंट की या किसी एम्बेजलमेंट में आप हिस्सा बने, जो भी अलल्ले तरल्ले आपने जिंदगी में किए, वो सारी उनकी फाइलें खोल के कच्चा सट्टा उनके सामने रखा गया तो वो चले गए। कुछ को आइंदा की रगबत दी गई कि आप इधर आएंगे तो आपको तरीके से काम पाकिस्तान में कोदा दिया जाएगा, MNA बनाया जाएगा, MPA बनाया जाएगा, मिनिस्टर बना लिया जाएगा, आपको आपके किसी अजीज रिश्तेदार को, आपकी मिसेज को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को मिनिस्टर बना दिया जाएगा, लालच दिया गया। और कुछ के साथ तो बाकायदा डील हुई होगी जो ज़ाहिर इमरान खान के इंतहाई करीब हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो है खबर माने का अगर उस वक्त ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, अपनी मिसेज का भी, बुशरा की भी तारीफ करते हैं, इमरान खान की भी तारीफ करते हैं और वो कहते हैं जिंदगी में इतनी नेक पाक मैंने औरत जिंदगी में नहीं देखी, और अब आज अगर वो इस तरह की इंटरव्यूज दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कोर्ट्स में जाके लिख के दे रहे हैं, केस बाकायदा फाइल कर रहे हैं, तो उसकी वजह कोई ना कुछ तो होगी। तो ये सौदेबाजियां, ये मुखमुका, ये डर खौफ, ये सारा कुछ बिल्कुल हमारी हिस्ट्री इसमें भरी हुई है और ये सिर्फ सद्दाम हुसैन नहीं, ये सब कुछ आज के दिन में हो रहा है। हाँ, कुछ चीजें आज पता चलेंगी, कुछ हफ्ता 10 दिन बाद पता चलेंगी, कुछ 40 साल बाद पता चलेंगी, लेकिन ये सब हो रहा है जी।
ये आपको अगर नहीं भी पाकिस्तान से पता चलेगा तो उस क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जब अमेरिका की आउट होगी तो 25 से 40 साल के दौरान वहां से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अगर आप वज़ायफ की और पोजीशन की बात करते हैं तो ये हमारी अपना खमीर गलत है। महबूबा मुफ्ती सारी उम्र कांग्रेस के साथ रही मगर जब उसको वजारत आला मिलने लगी तो जनाब उसने BJP के पांव छू लिए। पोजीशन के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज इन अमेरिका। जनरल राहील शरीफ के बाद 2015 के बाद अगर किसी को बाकायदा बुलाया गया, हालांकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अमेरिका से कोई कोर्स नहीं किया हुआ, नो कोर्स व्हाटसोएवर। पाकिस्तान के आला अफसरों के लिए 60 वज़ायफ भी जारी किए गए हैं जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने भी अवेल नहीं किया। क्या वजह है कि अमेरिका ने बाकायदा दावत दे के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया? इंडिया के साथ भी थोड़ा सा क्या इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाया गया है या टू डू मोर?
अच्छा, हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब का ये पहला ऑफिशियल दौरा है और ये एक्सपेक्टेड था, और इसमें वहां के वजीर दिफा, उनके सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के सरबराह और कुछ लोग तो ऑन द रिकॉर्ड मिल रहे हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मिलेंगे, और वहां CIA के चीफ और वो और साउथ एशिया को जो हैंडल करते हैं वो मिल रहे हैं। तो यकीनन वहाँ पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो अस्करी से ज्यादा सियासी सूरत हाल है, और अगर अस्करी मामलात पे बात करनी हो तो उसके लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद मिर्जा, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बहुत एक्यूरेट पर्सन है, वो एक वाकई उस तरह के एक मिलिट्री मैन उन्हें कहा जाता है और वो समझते हैं। अगर इस तरह की कोई डील होती तो वो आते। आसिम मुनीर साहब तो अब अस्करी से ज्यादा सियासी हो चुके हैं और उनके साथ सियासी मामलात पे ही बात होगी और चीजें भी बाद में यही निकलेंगी, क्योंकि इस वक्त तक जो उन्होंने फार्मूला रखा हुआ था नो मर्सी वाला, वो फार्मूला अभी तक वो अपनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजा तरीन अब जो है मिलिट्री कोर्ट्स की उसे कंटिन्यू करने की इजाजत जो दे दी गई है, और उसमें किसको नहीं पता कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है और वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिनके बारे में कल तक ये मुगालता था पूरी कौम को कि शायद ये सिविल लिबर्टीज के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स की राह में ये खड़े हो जाएंगे और ये नहीं होने देंगे। लेकिन अब आज देखा सारी दुनिया ने कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और उनके वही साथी सिवाय एक मुसर्रत हलाली, जिन पे ये तवक्को ये थी पहले दिन से कि मुसर्रत हलाली जो है वो खड़ी होंगी और वो खड़ी हो गई, एक उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, बाकी जजेस तो सारे चले गए। अब अगर इससे पहले जो फैसला हुआ था उसमें 6 जजेस थे, अब जो फैसला हुआ इसमें 5 जजेस थे, और अगर अब कल तक जिस तरह इसे दोबारा चैलेंज कर दिया गया है इत्तेजाज हसन साहब ने भी, पीटीआई वालों ने भी और बाकी लोगों ने भी, अगर ये फुल कोर्ट बनता है तो तकरीबन अब तक ये सूरत हाल क्लियर है कि कितने लोग जो है मिलिट्री कोर्ट के हक में जाएंगे, कितने खिलाफ जाएंगे। मसला उनके लिए होगा जो पहले अपना दे चुके हैं, अपना दिमाग अपना जहन बता चुके हैं। अब अगर फुल कोर्ट बनता है तो फिर देखते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता। लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के बॉर्डर वहां उन्होंने गलती से क्रॉस किया और वहां उन पर इल्जाम ऐसे ही लगे कि उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया, लेकिन उन पाकिस्तानियों के खिलाफ इंडिया में मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस नहीं चले, उनके सिविल कोर्ट्स में केस चले और वो लोग वापस पाकिस्तान पहुंच गए, ऐसे एक दो लोगों के इंटरव्यूज शायद आज या कल पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल पर आ जाएंगे। इस्लामाबाद में एक साहब हैं जो एक मस्जिद में इमाम मस्जिद हैं इस्लामाबाद में, और उनमें इंडिया में वो गए और वहां उन पर इल्जाम यही था कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया, लेकिन उनका केस इंडिया की मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चला क्योंकि वो पाकिस्तान के एक सिविलियन थे, इसलिए उनका सिविल कोर्ट में केस चला। अगर पाकिस्तानी सिविलियन इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करे तो उसका तो इंडिया की सिविल अदालत में केस चले, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी जो पॉलिटिकली एक मोटिवेटेड बंदा गलती से सोच समझ के या किसी भी तरीके से जना हाउस, जिसको क्लेम किया जाता है कि जना हाउस हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जना साहब का घर था, अगर वो जना हाउस जिसे आजकल वो कोर कमांडर हाउस आप कह सकते हैं और उसे आजकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन के जुमरे में आप डाल सकते हैं, उस पर अगर उसने हमला किया या वो चला गया तोड़फोड़ करने या अपना गुस्से में अपने गुस्से का इजहार करने चला गया, उसका मुकदमा आप मिलिट्री ट्रायल उसका करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंडिया में जाए तो उसका नहीं होता क्योंकि वहां सिविल लिबर्टीज और सिविल आजादियां एक आम सिविल शहरी के लिए बेहतर हैं। तो क्या मुवाजना होगा दुनिया में और फिर ये आगे चल के इसकी सूरत हाल क्या होगी। लेकिन लोग बेनकाब हो रहे हैं और इमरान खान ने जो कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल और लोकल एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया, तो ये बेनकाब होने का सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इन्हें इमरान खान को कोई रास्ता नहीं देना पड़ेगा। और इमरान खान रास्ता वो नहीं मांग रहा जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी सरूर पैलेस जद्दा भागकर मांगा था, इमरान खान रास्ता मांग रहा है इलेक्शन का और पब्लिक के पास जाने का, इसी वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और अब ये जो जिस तरह के इंटरव्यूज कराए जा रहे हैं, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा था कि आप इलेक्शन मुलतवी करने की बात टीवी पे नहीं कर सकते, बीवी के साथ कर सकते हैं, अगर टीवी पे नहीं कर सकते और बीवी के साथ कर सकते हैं तो आसिफ जरदारी साहब को ये आजादी हासिल है कि उनकी मिसेज दुनिया में नहीं रही, मौलाना फजल रहमान साहब की मिसेज नहीं रही, उनको ये आजादी हासिल है। शायद इस वजह से वो टेलीविजन पर आकर दोनों बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे मुलतवी किए जाएं। नवाज शरीफ साहब की भी मिसेज नहीं रही, वो भी धड़ल्ले से आके कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे किए जाएं। तो ये क्या वो सारे लोग जिनकी बीवियां नहीं है वो टीवी पे आकर कह सकते हैं? और काजी फायज ईसा साहब के कान पे जून तक नहीं रिंगती, रिपोर्टर्स को एंकर्स पर्सन को आप धमकियां देते हैं कि आपने टीवी पे ये बात नहीं करनी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब से आप क्यों नहीं पूछते, मौलाना फजल रहमान साहब से क्यों नहीं पूछते कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे करा दें? और फिर ये जिस तरह के अभी धमाके होने शुरू हो गए हैं और फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान में से एक नई तहरीके जहादे पाकिस्तान एक नई तंजीम भी लॉन्च कर दी गई है, ये उनका शायद इससे पहले एक मियां वाली एयरबेस पे उन्होंने एक हमला किया था और ये कल वाला दूसरा हमला है उनका, और तहरीके जहादे पाकिस्तान के बारे में ये एक तासर पाया जाता है और शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंप्लेंट कर भी दी है अफगान गवर्नमेंट से कि आपके लोग जो अफगान गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं वो तहरीके जहादे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और खबर है कि इस वक्त क्योंकि हमारे फोर्टनाइटली मुजाकरात होते हैं दोहा में पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के, अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के, अभी ताजा तरीन रिपोर्ट वहां से दोहा से ये आई है कि उन्होंने 20 अरब रुपया मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आपने लोगों की लिस्टें भेजी हैं इन्हें हमने रीसेटलमेंट के लिए हमें पैसे चाहिए, हम इन्हें अफगानिस्तान के शुमाल में कोई जगह देंगे और वहां इन्हें सेटल कराएंगे, उसके लिए हमें 20 अरब रुपया दे दिया जाए। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और वजारत दफा और हमारा वजारत दाखिला, वो सारे इस बात पे सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि क्या ये हमें हमारे साथ कोई डबल गेम तो नहीं हो रही, क्या अफगानिस्तान गवर्नमेंट अगर 20 अरब रुपए से राजी होती है, क्योंकि हमें तो इससे ज्यादा पैसा हमें इस पे लग रहा है तरीके तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करने में और उनकी कार्रवाइयां रोकने में हमें इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, अगर 20 अरब रुपया अफगान गवर्नमेंट को हम दे दें तो क्या ये वाकई तरीके तालिबान पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान से भाग के वहां पनाह लिए हुए हैं उनको वहां रीसेटल करने में कामयाब हो जाएंगे, और क्या उनकी हम नेशनैलिटी उन्हें डिसओन करने में कामयाब हो जाएंगे, और क्या उन्हें अफगानिस्तान अपनी नेशनैलिटी दे देगा, और क्या वो आइंदा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये डेवलपमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं हर तरफ, लेकिन हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान कोई दुश्मन नहीं है पाकिस्तान का। अगर कल तक आप उसके सामने सारे इंक्लूडिंग आसिम मुनीर साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तो आप उनके सामने एक लाइन में खड़े होकर उन्हें सलूट करते थे, और अगर उस वक्त आप सलूट गलत कर रहे थे तो क्या हमारे सास इदारों को और हमारे लोगों को जब वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे 1997 में उन्होंने पहली दफा इलेक्शन में हिस्सा लिया, फिर 2002 में लिया, फिर 2008 में उन्होंने बाइकाट किया, 2013 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2018 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, इस सारे अमल के दौरान क्या हमारे सासेदारों को पता नहीं था कि ये बंदा जो है ये मुल्क दुश्मन है? अगर ये कल तक मुल्क दुश्मन नहीं था तो आज मुल्क दुश्मन कैसे हो गया जब पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है? तो उसके पीछे कौम के खड़े होने को उसकी ताकत समझें और उसे अपनी ताकत समझें, पाकिस्तान की ताकत समझें और उसे पाकिस्तान के हक में बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का।
बहुत शुक्रिया
बजाय इसके कि आप उसको पीछे धकेल रहे हैं, दीवार के साथ लगा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को चेक करें कि आप बयानबाजी में सारे के सारे बड़े बाहर हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका, सिर्फ ऐलान बाकी, निगरान वजीर आजम। मैं आज यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देना चाहती हूँ। दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरह इमरान खान को राजी करने के बाद मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाए, मगर अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि उनको मुल्क से निकालने की कोशिश की जाए, विच इज बीन दे आर वर्किंग। मैं अभी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी, विच आई कुड नॉट शेयर इट टुडे, आई विल इंशाल्लाह शेयर टुमारो। बहादुर शाह जफर को भी आपको पता है कि बर्मा की तरफ मुल्क बदर किया गया था, जो आज म्यांमार कहलाता है, और हिंदुस्तान में कैसे वो जो हेरिटेज की बिल्डिंग्स हैं उनके साथ जो हो रहा है, CNN ने इसकी कवरेज किया, आई विल कवर इट टुमारो। कहा जाता है कि शायद मुल्क बदर इमरान खान को भी करेंगे, हम कभी भी अपने आपके साथ सिंसियर नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब।
आप केयर टेकर गवर्नमेंट की जो एग्जांपल देते हैं ना, तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो इंतहा की नालायक साबित हो रही है। फॉर एग्जांपल
जी, टाइम ही खत्म हो गया जी, आप कुछ भी बता दीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रही
हूं। एक रिक्वेस्ट मैं अपनी ऑडियंस से करना चाहता हूं कि नमल वाले आपको पता है यहां वो फंड रेजिंग कर रहे हैं, हर साल करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनका जो टोरंटो में सैटरडे को जो फंक्शन हो रहा है वो तो सोल्ड आउट हो गया है, लेकिन जो फ्राइडे को हैमिल्टन में हो रहा है उसमें अभी तक उनके पास कुछ टिकटें, चंद टिकटें, ओनली अ फ्यू टिकटें बाकी हैं। तो मैं चाहूंगा कि लोग हमारा जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर वो नमल का जो हैमिल्टन में फंक्शन हो रहा है फ्राइडे वाले दिन, वहां की टिकट लेना चाहते हैं तो वहां के नमल के डायरेक्टर हैं तारिक अयूब साहब, उनसे राबता करें 2892378553, 2892378553। तारिक अयूब साहब से राबता करें और उनसे नमल का जो फंड रेजिंग डिनर हो रहा है उसके लिए टिकट आप हासिल कर सकते हैं। दोस्त हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा नेक काज के लिए कर रहे हैं, तो उनकी एक सीट भी हम चाहेंगे कि खाली ना हो, और कोई बंदा जाना चाहे तो वहां जाने से महरूम ना हो। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, आपका काम है उन्हें फोन करके रब्ता करें और उनसे टिकट ले लें। जी
बहुत शुक्रिया। समीन, मैं एक बाकायदा अलकादर यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं आपको वर्चुअली लेकर के चलूंगी अलकादर यूनिवर्सिटी आते दिनों में। फयाज बिलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड सीइंग यू प्रोबेबली टुमारो। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया जो इस काबिल करते हैं। अगर आप बिजनेस ओन करते हैं, गिव अस अ चांस टू एडवर्टाइज योर बिजनेस, आई प्रॉमिस विल डू आवर ड्यू डिलिजेंस, और आपके पैगाम को हर शख्स तक हम लेकर के जाएंगे। स्टे ट्यून्ड प्लीज। माजी भैया,
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सरला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां, सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दिया ओंटेरियो विच 9 लोकेशंस विचों, जिथे मर्जी आ जाओ।
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
चलिए सब 4:49:15 हमारे घड़ी में हो चुके हैं और आपके पति की बात बताऊंगा। आज के लिए भी फायदेमंद होगा और आपके फ्यूचर के लिए भी फायदेमंद होगा और वो बताएंगे हमारे और आपके अपने जनाब फजल वदूद साहब, इंश्योरेंस प्रो के फजल वदूद साहब। फजल वदूद साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फजल भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
माजिद भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको भी और तमाम बहन भाई जो सुन रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुनाइए क्या चल रहा है सर?
अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने जैसे अपने शुरुआत में कहा कि भाई आप आज भी फायदा उठा सकते हैं और फ्यूचर में भी फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप हमारे लिस्नर्स को जो हमें वॉच कर रहे हैं उनको आप फायदा पहुंचा सकते हैं?
जी आपने ना एक ही सेंटेंस में वो क्या कहते हैं कि कूजे दरिया को कूजे में बदल वो इस तरह
जी
कि देखें दुनिया में बहुत किस्म के की इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत किस्म के एसेट्स हैं जिसमें आप अपने जायदाद बनाते हैं, अपना सब कुछ वो करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा वाहिद प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है कि देखें आप एक घर लेते हैं $1 million का, 20% पे करते हैं, 10% करते हैं, जो भी आपकी जेब में है आप करते हैं, और उसके बाद थोड़ा 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 पे करते करते किसी वक्त में जाके वो एसेट आपका पूरा आपका 100% होता है। इंश्योरेंस इसके ऑपोजिट वर्क करता है। आज $1 million, देखिए आज हमारी जरूरत ये है कि हमारे पास $1 million हो तो हमारी फैमिली, हमारी छत, हमारे बच्चों की फ्यूचर वो सिक्योर है। किसी को मिलियन, किसी को 500, किसी को 10 million भी हो सकता है। मैं एक सिर्फ बात के लिए एक $1 million की बात कर रहा हूं। अब आज ही मैंने एप्लीकेशन साइन की, इसी वक्त एक कमिटमेंट, एक एसेट खड़ा हो गया मेरे एक गारंटी के तौर पे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए। हम इस विशफुल थिंकिंग और एक हमारी होप है, हर चीज होप पे बेस्ड है कि मैं हर रोज उठूंगा, मेरे सुनने वाले हर रोज उठेंगे, एटलीस्ट एज 65-70 तक काम करते रहेंगे साहब, और अपने बीवी बच्चों की अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, जो ख्वाहिशें हैं वो अचीव करेंगे। तो अब इंश्योरेंस राइट फ्रॉम द डे वन हमें ये चीज की गारंटी दे देता है कि अगर रास्ते में स्लिप हो गए साहब, ऊपर वाले ने जल्दी आपसे प्यार करते हुए जल्दी बुला लिया, तो पिछलों का बंदोबस्त हमने कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ इन्वेस्टमेंट, इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, बट अबव ऑल इट्स अ लव ऑफ लव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लव, अपने प्यारों से कमिटमेंट, और उसके लिए है। क्यों करना पड़ता है? हमारे पास मॉर्गेजेस हैं, हमारे पास गाड़ियां लोन पे हैं, हमने बोरोइंग की हुई है बिजनेसेस के लिए, तो बहुत सारी चीजें हमारी बोरोइंग पे और इन्वेस्टमेंट उस पे हो रही हैं, इसलिए ये आज की जरूरत है।
क्या बात?
फ्यूचर की तरफ जब हम उसमें बहुत सी चीजें इनकॉर्पोरेट इस तरह कर देते हैं, उसको डिजाइन इस तरह कर देते हैं कि ऊपर वाला ख्याल रखे, आप 60-70 साहब 100 साल तक जिए, तो आपकी उसमें एक इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट डालते हुए आपके लिए आपके एक अच्छा रिटर्न भी बन जाता है। बच्चों के लिए भी इसी तरह ही है कि छोटा सा प्लान $200-250 महीने से शुरू कीजिए साहब, REFC को भी भूल जाइए, जब बच्चा यूनिवर्सिटी जाने के पास पहुंचे तो 70,000-75,000 डॉलर पढ़ाई के लिए है, 30-35 साल की उम्र में अगर घर वर लेना है तो 1.5-1.5 लाख की डाउन पेमेंट का बंदोबस्त है, और अगर उसको छोड़ दें तो वो 7-8-9 लाख डॉलर तक पहुंच जाता है, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट 20 सालों में मैं ये कहता हूं कि तकरीबन 50,000-1,000 डॉलर की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है बाय इन्वेस्टिंग 200, 225, 300 डॉलर अ मंथ, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। तो आइडिया यही है कि हमने रिस्क को सेव करते हुए, रिस्क को मिटिगेट करते हुए अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ताकि हम बच्चों बीवी अपने मामलात को आज भी और कल जब हम रिटायर हों या जाना तो है तो कुछ अपनों के लिए अपने प्यारों के लिए कुछ कर पाए। शर्त और रिक्वेस्ट इतनी है कि पता कर लीजिए, पता करने की कोई फीस नहीं है, या मेरे पास तशरीफ ले आइए चाय पीजिए या मुझे चाय पिला दीजिए, देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके बजट में रहते हुए बेस्ट लोएस्ट गारंटीड रेट्स, बिकॉज आई वर्क विद ऑल ऑफ द कंपनीज, और कुल मिला के 31 साल हो रहे हैं कम दिस मार्च। माजिद भाई थैंक यू सो वेरी मच,
वेरी वेल सेट सर, वेरी वेल पुट। और कंडीशन मैंने हमेशा आपसे कहा सामने नाजरीन कि कंडीशन ये है कि आप एक दफा जनाब फजल वदूद साहब को कॉल करके उनको उनसे आप मीटिंग करें, खुद भी बैठें, अपने बीवी बच्चों को भी बिठाएं, और अभी नियर फ्यूचर का और आगे की फ्यूचर का आप देखेंगे किस तरीके से आप अपना और अपने बीवी बच्चों को सिक्योरिटी दे सकते हैं। नंबर मैं दे देता हूं आपको फजल वदूद साहब का, 9056075000 जनाब फजल वदूद का फोन नंबर है, प्लीज गिव हिम अ कॉल। फजल भाई थैंक यू सो मच,
थैंक यू सो वेरी मच सर, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग, अल्लाह हाफिज।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक कमर्शियल प्लान, इसके फौरी बाद हम सब आपसे फिर कहते हैं कि 6478724900 पे डायल करें और वहां पर आप हमारी पूरी की पूरी न्यूज सुन सकते हैं। तो पहले एक कमर्शियल, उसके बाद साइन ऑफ, एंड साइन ऑफ के बाद फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे 6478724900 पर।
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
जी समय नाजरीन वेलकम बैक अगेन एंड यस टाइम हो जाता है ताजा तरीन गर्मा गर्म अंदरूनी से अंदरूनी खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी सिर्फ यहां पर 770 AM पर राइट हियर इस वक्त आपको जो खबरें मिलेंगी आप देख लीजिएगा उसको उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैं बैठा सुबह से मेहनत कर रहा था मैंने नहीं नहीं शादी जी मेहनत करती हैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हैं इसीलिए हम इनको इतने ऑफ दे देते हैं महीने में हमें पता है कि वो अब कराची वालों से गोलीबाजी कौन करेगा मगर ये ट्राई करती हैं गोलीबाजी करती हैं कि भाई वो मेरी तबीयत सही नहीं है वो तबीयत नेक्स्ट डे आती है ना एकदम आशाश वशाश वो एक दिन की तबीयत खराब होती है ये कहाँ की बीमारी है यार हमें भी बता दो हम जब बीमार पड़ते हैं नाउज बिल्ला हम तो पांच पांच दिन के लिए पड़ जाते हैं मगर इनकी बीमारी बड़ी यूनिक बीमारी है कि वो जी एक दिन और सुबह सुबह फोन आता है महेश भाई इसी तरह आता है महेश भाई मैं बहुत बीमार हूं मैं सो चला भी जा रहा रात भर नहीं सोई अच्छा अच्छा भाई नहीं आप आराम करें नेक्स्ट मॉर्निंग देखो सुबह सुबह 10 बजे इधर होती है वो और हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ये कौन सी वाली गोली खाई है आपने पता लगा वो पाकिस्तानी गोली खाई है उन्होंने पाकिस्तानी गोली ऐसी है कि उन्होंने एक दिन के अंदर बंदे को खड़ा कर दिया जी इन गोलीबाजी का सेशन जो है ये हम आपके लिए पेश कर रहे हैं मोमिन हलाल मीट की जानिब से मोमिन हलाल मीट ओपन 7 days a week 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप जा सकते हैं वहां पर 1010 ड्रीम क्रेसेंट बड़ी जबरदस्त सेल लगी हुई है ये टेरी फॉक्स एंड एग्लिंटन का मेजर इंटरसेक्शन है और सब मोमिन हलाल मीट पे आप पहुंच जाइए 1010 ड्रीम क्रेसेंट पे एंड सेव लारा मनी राइट कस्टम कैबिनेटरी मेकर्स विद ए परफेक्ट टच सब आपको किचन बाथरूम काउंटर टॉप्स क्लोजेट रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह करानी हो एंड नो इंटरेस्ट एंड नो पेमेंट फॉर 12 मंथ्स तो सब आप कॉन्टैक्ट कीजिए सैफ से राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक 647-300-8473 इनका फोन नंबर है लास्ट बट नॉट लीस्ट सब सोडी फर्नीचर पर जाइए हर एक फर्नीचर की जरूरत है आप सोडी फर्नीचर पे बे इंतहा सेविंग अप टू 86% की सेविंग है आपको आप उनका फ्लायर देख लें अगर आमिर मेरे दोस्त होते तो जरूर फ्लायर दिखाते हैं मगर जैसे आरफा जी बात करती हैं तो सारे फ्लायर सामने आ जाते हैं मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरे पर वही नहीं कुछ फ्लायर ही नहीं है 10%, 20%, 50%, 84%, 86% सेविंग्स दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट सेविंग्स सोडी फर्नीचर पे पहुंची है 142 कैनरी रोड इन ब्रैमटन 9058747171 सोडी फर्नीचर का फोन नंबर है हाँ साहब चलिए ले चलता हूँ वहां पर मैं अब आपको कहाँ ले जाना है आपको वहीं ले जाएंगे हम जो किस्से सुना है ना अभी तक मैंने जितनी तारीफें करी है ना इनके तारीफ में जो पुल बांध दिए ना मैंने वन एंड ओनली शाजिया मलक जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कैसी हैं आप
वालेकुम सलाम भाई मैं तो ठीक हूँ उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है
ओहो
कायन व्हाट इज दिस
हिंट दे रही हैं आप
हाँ बिल्कुल क्योंकि मैंने आपको कल ही हिंट दिया था मगर आपको समझ ही नहीं आई आपको आज भी नहीं समझ आ रही हाँ। मैंने आपको कहा था कि आपने और आमिर ने मुझे इतना बदनाम कर दिया कि महीने के आखिर में छुट्टी कर दी है वो अब हम चेंज कर
तो बीमारी
स्ट्रेटजी हम चेंज कर रहे हैं
बीमारी को आपने कहा मिडिल ऑफ द मंथ
हाँ मिडिल ऑफ द मंथ हम करेंगे या जो है थर्ड वीक में हम करना शुरू करेंगे
मतलब वो एंड ऑफ द मंथ जो है वो
नहीं 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 अब आप दोनों को पता चल गई मेरी स्ट्रेटजी तो अब मैंने चेंज कर दी है अब या महीने के शुरू में कभी आएगी कभी मिडिल में आएगी कभी थर्ड वीक में आएगी एंड पे अब मगर बिल्कुल नहीं आएगी
अच्छा चलो हाँ। सही है अगर 3 हफ्ते हमने पास कर लिए तो इसका मतलब इस महीने इनकी तबीयत खराब नहीं हो रही है
यस तो ये चक्कर है जी
चक्कर हो गया
हाँ जी ये चक्कर है और दूसरी बात ये है कि मज भाई आप अल्लाह का शुक्र नहीं करते हैं कि मैं बस एक ही छुट्टी करती हूँ 10 दिन की छुट्टी करके मैं बैठ जाऊं मैं कहूं मैं बीमार हूं तो आप क्या करेंगे मुझे घर से घसीट के लाएंगे आप
हाँ हमारे एजेंट घर में बैठे हैं आपके हाँ आपके हस्बैंड जो है वो कहते हैं वो ले जाए उन्होंने ले जाए यार
अगर हस्बैंड ने ऐसी हरकतें की तो वो हरेसमेंट के अंडर आएंगी फिर सोच लें कि आपके दोस्त का क्या हाल होएगा।
वो देख ले, देख ले कि वो
देख ले मजद,
वो खुद नहीं चाहते कि आप घर पे रहें।
अच्छा।
वो कहते हैं यार प्लीज
लेके जाओ इस न्यू ईयर,
ले जाओ यार ले जाओ, मेरी जिंदगी
खराब हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा चक्कर। अच्छा जी, हमें कल, थैंक यू वेरी मच, कल खबरें आपने बड़ी पसंद की, मुझे बड़े मैसेजेस आए कि जी आप जो अंदर की खबरें देती हैं वो नहीं, ये खासतौर पे वो जो सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी कनाडा के अंदर जो कि किसी को नहीं मालूम थी, वो दिए, थैंक यू वेरी मच उसको पसंद करने के लिए। आज भी हम आपको एक बहुत बड़ी अंदर की खबर देंगे, ऐसी खबर है जो आपने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखी होगी, तो अच्छा। वो खबर आज हम आपको खुद देंगे। और हमारे नादान भाइयों और बहनों, मतलब मैं माजद भाई के भाइयों और मेरी बहनों, ये आप मुझे बार बार बोलते हैं कि जी स्पेशल रिपोर्ट्स बताएं, सर जी टाइम नहीं है, ये गर्मियां नहीं है, ये सर्दी है, टाइम बहुत ऑलरेडी हमारे पास कम है, तो स्पेशल रिपोर्ट्स जो है हम नहीं दे सकते। अभी जैसे ही हमारा टाइम बढ़ जाएगा, वो जो गर्मियों में होता है ना मेरे पास एक घंटा होता है, तो उसमें हम स्पेशल रिपोर्ट्स कर सकते हैं, तो तब मैं आपको बहुत सारी स्पेशल रिपोर्ट्स जो है वो सुनाऊंगी। तो ऐसा है चक्कर, ठीक है जी। अच्छा जनाब, हम शुरू करते हैं अपनी खबरें, और आज की जो सबसे बड़ी जो दो खबरें हैं, सबसे पहले वो भी आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। आपने सुना है कि जो लिबरल पार्टी है उसके कॉकस की लास्ट मीटिंग हुई है, आपने नहीं सुना होगा इस बारे में। अच्छा जी, लास्ट मीटिंग अगर आपने सुना भी होगा कहीं पे कि कॉकस की लास्ट मीटिंग हुई है लिबरल पार्टी की, आपने ये नहीं सुना होगा कि उसके अंदर होया क्या है। अब उसमें होया क्या है वो हम आपको आज सारी उसकी डिटेल्स बताएंगे। अच्छा जी, ये जो हुई है इनकी कॉकस की मीटिंग, तो ये उस वक्त हुई है जिस वक्त आपको पता है कल हमने जो आपको न्यूज दी थी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जो पैलेस्टाइन के ऊपर वोट हुआ था कि भाई इसके इसमें सीज फायर लाने की जरूरत है। आपको पता ही है कि कनाडा ने हमेशा कहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि ट्रूडो साहब ने यह भी कहा था कि इसराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इन्होंने यू टर्न लिया है, यू टर्न नहीं, थोड़ा सा टर्न लिया है अपनी पॉलिसी से, टर्न लिया, और इन्होंने जिस वक्त कल वोट हुआ, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, इन लोगों ने सीज फायर के लिए हामी भरी भरी वहां पे। अब जाहिर है कि उसके ऊपर ज्यू कम्युनिटी ट्रूडो साहब से बड़ी नाराज हो गई है। उन्होंने कहा जी हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे साथ ऐसे करेंगे। सेंटर फॉर इजराइल एंड ज्यूइश अफेयर्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर शॉक्ड एंड डिसगस्टेड बाय कनाडाज स्टैंस। और लेकिन उससे पहले हमने आपको एक और बयान मेलनी जोली साहब का सुनाया था, उन्होंने कहा जी कि हम इसराइल को राइट टू डिफेंड तो हम कहते हैं जरूर, लेकिन ये डिफेंस किस हद तक होना चाहिए, और जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है उस वायलेंस के ऊपर हम क्वाइट नहीं बैठ सकते। उसी सिलसिले की जो थी आज फिर कॉकस की मीटिंग हुई लिबरल पार्टी की। अच्छा जी, अब जब लिबरल पार्टी की यहां पे मीटिंग हुई तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं लिबरल पार्टी के वो भी नाराज नजर आए, क्योंकि जाहिर है वो भी चाहते थे कि कनाडा जो है वोट में हिस्सा ना ले। उसमें यह हुआ कि जो हाउस लीडर करीना गुल्ड हैं, उन्होंने कहा, जिस वक्त ट्रूडो साहब बोल चुके उसके बाद उन्होंने, करीना गुल्ड ने कहा कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंस भी होना चाहिए, हमारा एज अ नेशन प्रिंसिपल स्टैंस भी होना चाहिए। ये जो हॉरिफिक ट्रेजेडी चल रही है इसराइल की साइड पे भी और पैलेस्टाइन की साइड पे भी, इसके ऊपर हम खामोश नहीं बैठ सकते। हमें पता है कि कनाडा में लोगों के इस वक्त इमोशंस जो हैं बहुत ज्यादा हाई हैं इस मसले के ऊपर, लेकिन फिर भी एज अ कंट्री जो है ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था मगर हमको लेना पड़ा। लिबरल एमपी उस मौके पर, ये जो हुई है इनकी कॉकस की मीटिंग, उसमें एंथनी हाउस फादर जो है उन्होंने भी कहा कि जी मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, ये किस तरह का फैसला जो है वो कनाडा ने लिया है, और आपको सीज फायर की कॉल जो थी वो नहीं देनी चाहिए थी। और मैं तो जो है, मगर उन्होंने कहा जी कि मैं अपने एज एन इंडिविजुअल एमपी उसके सेंटीमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, जो कॉकस ने बात की है मे बी मैं उसकी बात जो है वो नहीं कर रहा हूं। हाउसिंग मिनिस्टर जो थे शॉन फ्रेजर, उन्होंने कहा जी कि हमने एक रेजोल्यूशन लाया था यूनाइटेड नेशंस में और उसमें हमने स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज की थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जैसे अदारों के ऊपर आप उनको जोर नहीं दे सकते कि जो एक सर्टन कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू या रेजोल्यूशन के जो वर्ड्स उसने यूज किए हैं आप भी उसको फॉलो करें। हम उनको ये जोर नहीं दे सकते थे, अगर जो कनाडा ने रेजोल्यूशन बनाई थी अगर उसको फॉलो यूनाइटेड नेशंस करता तो ये जो आज आपको बहुत सारी हमारे से शिकायतें हैं वो ये ना होती। लिबरल एमपी जूली डेब्रूसन जो हैं उन्होंने कहा है जी कि हम जो है चाहते हैं कि हम पीस की तरफ जाएं, और ये जो कनाडा का रेजोल्यूशन जो पास किया गया है उसके ऊपर जो है हम खुश हैं क्योंकि इससे अब इलाके के अंदर पीस आएगा। लिबरल एमपी बैंकर ने इस मौके के ऊपर कहा कि हमको कुछ कंडीशंस जो थी वो ले डाउन करनी चाहिए थी اپنے ریزولوشن کے اندر جو کہ ہم نے نہیں کی, جس کے بارے میں آلریڈی شان فریزر صاحب کہہ چکے تھے کہ ہم نے ریزولوشن ڈالی تھیں لیکن وہ جو ہے پوری کی پوری بات جو ہے ہماری یونائیٹڈ نیشنز نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ٹروڈو صاحب نے بھی پھر اس کے بعد پھر سے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجن بھی تھا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ جو ہے اس کے اندر پیس آئے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کانفلکٹ میں جو ہیں وہ ہارڈ ہٹ ہیں اور